सिद्धार्थ के फोन पर लगातार कुछ मैसेज आने शुरू हो गए थे। वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि आकांक्षा ओबेरॉय का था। आकांक्षा ने रोते हुए सिद्धार्थ से कहा था, सिद्धार्थ मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो इस वक्त? क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए सिद्धार्थ का ओबेरॉय हाउस में जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जल्दी ही सिद्धार्थ ने अपने अपार्टमेंट में आकांक्षा को आने के लिए कह दिया था। अब तो आकांक्षा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार क्लब के ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर ही सिद्धार्थ का अपार्टमेंट था और वहीं पर उसने आकांक्षा को बुलाया था, तो आकांक्षा खुशी खुशी तैयार होने लगी थी। वहीं नैना ओबेरॉय उसे रोकते हुए बोली थी, बेटा अब तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बहुत मुश्किल से सिद्धार्थ खुराना हमारी साइड आया है, लेकिन अब हमें ये मौका बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना है। आकांक्षा थोड़ा सा अपनी माँ का हाथ हटाकर चिढ़ते हुए बोली थी, मॉम प्लीज अब आप मुझे आगे का ज्ञान मत दीजिए, मैं आपको अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। और वैसे भी कितनी घटिया चाल चली थी आपने उन लोगों को लेकर, अगर आज वक्त पर मैंने सारी बात संभाली नहीं होती तो आज सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होता। बस दुआ कीजिए कि एक बार मेरी सिद्धार्थ खुराना से शादी हो जाए तो हो सकता है उसके बाद हमारी ज़िंदगी के दिन थोड़े बहुत ठीक हो जाएं। लेकिन आपको बिल्कुल भी इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ इतनी ज़्यादा घटिया किस्म की औरत निकलेगी, कैरेक्टरलेस निकलेगी। ये सुनकर अचानक नैना ओबेरॉय का चेहरा गुस्से से कांप उठा। उन्होंने पास रखा कुशन उसके मुंह पर दे मारा और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली थी, बंद कर अपनी बकवास, जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के भविष्य के लिए किया। क्या वो आदमी यहाँ से भाग गया था? उसके जैसा लड़का तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, और तू इतनी बड़ी हो गई, मगर आज तक मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन तुझे सब सच बताना पड़ेगा। मैंने अपनी इज्जत का सौदा किया था। हाँ, मैं आरव के साथ अपनी मर्जी से सोई थी, लेकिन उसे बलात्कार का रूप दे दिया, और इसमें तेरे बाप को सारी बातें अच्छी तरह से पता है, और ये प्लान बनाने वाले तेरे ही पिता हैं। नैना की बातें इस वक्त पूरी तरह से शीशे की तरह आकांक्षा के सामने साफ हो चुकी थीं। वो अपनी माँ को हैरानी से देखने लगी थीं, फिर धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोली थीं, मैं जानती हूँ कि आपने सब कुछ हमारी खुशी के लिए किया, लेकिन प्लीज़ अब आप कुछ मत कीजिएगा, बस सीधे तरीके से मेरी और सिद्धार्थ की शादी हो जाने दीजिए। उसके बाद देखेंगे कि आखिरकार उस छलक को मल्होत्रा परिवार का साथ कैसे मिला, और अगर वो आरव पहले एक मामूली दो कौड़ी का इंसान था तो इतना बड़ा अमीर कैसे बन गया। ये सुनकर एक पल के लिए नैना सच में सोच में पड़ गई थी। वो ईशान को देखने लगी थी। फिलहाल क्योंकि आकांक्षा तैयार होकर वहां से चली गई थी, तभी ईशान तुरंत आगे आया और बोला था, हमें लगता है कि आकांक्षा जो भी कहकर गई है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, और वैसे भी याद है ना, हमने आरव की मुंबई की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। क्या तुमने कभी उसके बैकग्राउंड के बारे में पता किया था कि आखिर उसका बैकग्राउंड क्या था? तब नैना अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए बोली थी, नहीं मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो एक गरीब फटीचर ही था। उसने कभी मुझे कोई महंगा तोहफा नहीं दिया जिससे लगे कि वो कोई अमीर आदमी है। हाँ, बाद में मुझे पता चला कि मुंबई में उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो भी मैंने अपने नाम कर ली थी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उसके पास कुछ और होगा। ईशान गंभीर होकर बोला था, फिलहाल अब हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि क्या वाकई वो आरव मल्होत्रा परिवार का वारिस है या फिर उसके पीछे कोई और कहानी चल रही है, और समाज में जो हमारी बदनामी हुई है उसे ठीक करने का रास्ता सबसे पहले आकांक्षा और सिद्धार्थ की शादी से होकर गुजरता है। अगर एक बार आकांक्षा की शादी सिद्धार्थ से हो गई, उसके बाद परिवार को लेकर जो बदनामी हो रही है और लोगों के बीच जो उल्टी सीधी बातें चल रही हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। अभी हमें शांति से पहले ये शादी हो जाने देनी चाहिए, उसके बाद देखेंगे, उस छलक को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये कहते हुए एक बार फिर नैना और ईशान दोनों का ही दिल कड़वाहट से भर गया था। बार बार उन्हें अपनी बेइज्जती याद आ रही थी जो अवार्ड सेरेमनी के दौरान हुई थी, क्योंकि तब से वो हर एक न्यूज़ चैनल की हेडलाइन वही बनी हुई थी। इतना ही नहीं, शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और पुलिस स्टेशन तक में लोग उन्हें उल्टा सीधा कह रहे थे। जो भी रकम नैना ने इनॉग्रेशन या किसी चीज़ के उद्घाटन के दौरान वसूली थी वो तक वापस करनी पड़ गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक उसके पास पैसों की कमी तक आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा सिद्धार्थ के बताए हुए लोकेशन पर जा पहुंची थी। उसने सोच लिया था कि आज कुछ भी करके वो सिद्धार्थ को अपना बना लेगी। सिद्धार्थ के अपार्टमेंट में कदम रखते ही उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और धीरे से मुस्कुराकर बोली थी, कितना खूबसूरत है ये अपार्टमेंट, बस एक बार मेरी शादी सिद्धार्थ खुराना से हो जाए उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी में आ जाऊंगी। मुझे खुराना मेंशन में रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन उस बुढ़िया के पास रहकर मुझे क्या मिलेगा जो सुकून सिद्धार्थ के पास जाकर मिलेगा। बस मुझे तो हर हाल में सिद्धार्थ खुराना चाहिए, बाकी किसी चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है। पैसा और शोहरत खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी जब सिद्धार्थ मेरे पास होगा। ये सोचते हुए आकांक्षा के चेहरे पर मक्कारी साफ दिखाई दे रही थी, तभी पीछे से सिद्धार्थ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, ओ तुम आ गई हो। सिद्धार्थ को देखते ही वो जल्दी से उसके पास चली गई और बनावटी मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रही थी। मीडिया वालों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कहाँ जाऊं, इसलिए मजबूरी में आपको फ़ोन करना पड़ा। आई होप आपको डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा।
सिद्धार्थ ने उसकी बात सुनकर बस शांत नजरों से उसे देखा और फिर बोला, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी और वैसे भी ठीक 3 दिनों बाद हमारा हल्दी फंक्शन है, तो तुम्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए। जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है वो भी कर सकती हो। इस वक्त दोनों के बीच इतनी कम दूरी थी कि उनके बीच से हवा तक गुजरने की जगह नहीं थी। हालांकि इतनी करीब होने के बावजूद सिद्धार्थ को कोई एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि आकांक्षा के बेहद करीब आने से उसे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। आकांक्षा हमेशा से महंगे परफ्यूम का इस्तेमाल करती थी, लेकिन झलक कभी किसी तरह का परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करती थी। उसके शरीर की नेचुरल खुशबू ही सिद्धार्थ को पागल बना दिया करती थी, इसलिए आकांक्षा के तेज परफ्यूम की खुशबू से इरिटेट कर रही थी। सिद्धार्थ ने हल्का सा पीछे हटते हुए खुद को उससे दूर किया और बोला, आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन तुम थोड़ा दूरी बनाकर खड़ी हो सकती हो। सिद्धार्थ की ये बात सुनते ही आकांक्षा का चेहरा उतर गया था। उसने सोचा था कि आज सिद्धार्थ उसके साथ पूरा वक्त बिताएगा, शायद उसके साथ रात भी गुजारेगा, लेकिन यहां तो उसने सीधे उसे दूरी बनाकर रहने के लिए कह दिया था। आकांक्षा ने तुरंत मासूम बनने की कोशिश करते हुए कहा, क्या आप मुझसे शादी सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को यह साबित करने के लिए कि आपको मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है? लेकिन सिद्धार्थ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके प्यार में ही तो मैंने सब कुछ किया है, फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं सिर्फ दिखावा कर रही हूँ? मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें किसी भी बात को लेकर सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं झलक का नाम तक नहीं सुनना चाहता।
सिद्धार्थ की आवाज में झलक के लिए नफरत साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी आकांक्षा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर मैं इस घर में पहली बार आपके साथ आई हूँ तो क्या आप मुझे ऐसे ही वापस भेज देंगे? अभी तक आपने मुझे अपना क्लब भी नहीं दिखाया, प्लीज़ मुझे अपना क्लब दिखाइए ना, वहाँ आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँगी, फिर वहीं से घर चली जाऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ कहते हुए आकांक्षा लगातार सिद्धार्थ को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मक्कारी छिप नहीं पा रही थी। आकांक्षा को बार बार रिक्वेस्ट करते देख सिद्धार्थ ने उसे गौर से देखा। एक पल के लिए उसे झलक की याद आ गई थी, शायद इसी वजह से वो ना चाहते हुए भी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। ये सुनते ही आकांक्षा के चेहरे पर खुशी साफ झलक उठी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सिद्धार्थ के दिल में अब भी सिर्फ और सिर्फ झलक ही बसी हुई थी। क्या आकांक्षा अपनी चाल में कामयाब हो पाई थी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।